पृष्ठ संख्या 24। सुख सुविधाएं निरस लगेंगी और यदि उस समय भगवान भी तुम्हारे सामने आए तो तुम उनको भी भगा दोगे। जो तुम्हारी स्थिति रहती है वही नारी की भी। पुरुष के बिना कैसे जी सकती है वह। स्वयं ईश्वर ने नर नारी की जोड़ी बनाई है। सारे जीवन में स्त्री जाति का निर्माण उसने किया है। प्रपंच का भार दोनों को एक साथ ढोना है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री कुछ नहीं कर सकते हैं। नारी का मुखावलोकन किए बिना संन्यास वृत्ति से कितने दिन काट सकोगे तुम। पूजा पाठ में भी नारी का होना महत्वपूर्ण माना गया है। श्री राम जी का दर्शन अगस्त ऋषि ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके साथ सीता जी नहीं थीं। जब शक्ति ही रावण उठाकर ले गया तब श्री राम हाय हाय करते सीता के शोक में मग्न एक भिखारी की तरह वन वन घूमते रहे। नारी की यह महिमा है। तुम पराक्रम दिखाकर बलशाली शत्रु को पराजित कर लो। शेर को घोड़े के समान उपयोग करो लेकिन अबला नारी के एक ही नेत्र कटाक्ष से तुम सारा धैर्य शौर्य पराक्रम हरण होगा। तुम उसका दासत्व करोगे। तुम शस्त्र से किसी को भी घायल कर सकते हो परंतु क्या नारी के समान शस्त्र न उठाते हुए भी केवल नज़रों से प्राणी को हताहत कर सकते हो। तो अब तुम बताओ श्रेष्ठ कौन है, स्त्री अथवा पुरुष। तुम्हें जो प्राणों से अधिक प्यार करती है, तुम्हारा पूरा ख्याल करती है, तुम्हारे इशारों पर बिजली के समान नाचती है, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए सुख दुख सब कुछ सहकर जो तुम्हारे जीवन से एक रूप हो जाती है, उसे ही दोषी मानकर तुम उस पर अत्याचार करते हो, आत्महत्या के लिए उसे मजबूर करते हो। तुम्हें इसकी कोई लज्जा भी नहीं। कितनी शर्मनाक बात है। यह नारी जन्मतः कोमल लज्जाशील मृदुल रहती है और तुम उसे ही निर्बल अविचारी और मूर्ख कहते हो। अरे मूर्खों, क्या तुम जन्मजात सबल और पराक्रमी उत्पन्न हुए हो। पृष्ठ संख्या 25। माता का दुग्धामृत क्या तुम पुरुष नहीं प्राशन करते। तो दोष क्या केवल नारी में रहते हैं। जिसके हाथ में लाठी वही बलवान, बाकी सब निर्बल। यही तो आचरण है तुम्हारा। तुमने अपने हाथों में सब धन दौलत रखकर नारी को कोठी में दासी बनाकर धौंस जमाकर दुनिया से दूर रखा, उस पर अधिकार जमाया। नारी के सद्गुणों को दुर्लक्षित कर अपने ही गुणावगुणों के दिए तुमने जलाए। नारी को विद्या प्राप्ति के अधिकार से वंचित कर दिया। उसके आने जाने पर रोक लगा दी। जहाँ भी वह जाती थी वहीं उसे उसके समान अज्ञानी स्त्रियां ही मिलती थीं। फिर दुनियादारी की समझ कहाँ से सीखती वह। पति के पहले पत्नी की मृत्यु हो या पत्नी के पहले पति की मृत्यु और जीवन, दोनों ही तो सर्वशक्तिमान नारायण के हाथों में है। किसी को जीवन या किसी को मृत्यु दे सकते हो, जवान मृत हो या बूढ़ा, इसका भी कोई नियम है। कोई जन्म लेते ही, कोई भरी जवानी में, कोई 100 साल जीकर, कोई सारा परिवार राजपाट का सुख भोग कर खुशी से अथवा दुखी होकर मृत्यु पाते हैं। या नहीं, जब काल के आगे तुम्हारे जैसे सबल पुरुष कुछ नहीं कर सकते, वहाँ इन बेचारी अबलाओं से क्या होगा? जब किसी नारी की कथा कही जाती है कि वह अपना सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई थी, तो क्या प्रजापति ने उसे यह कहा था कि किसी भी नारी को उसका सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? इसका कोई प्रमाण दे सकते हो तुम? एक सावित्री को छोड़ कौन नारी यम के पास गई? सावित्री ने पति के प्राणों के साथ और भी बहुत कुछ मांग लिया था। पति के प्राणों की भिक्षा यम दरबार में जाकर लाने का साहस एक स्त्री ने अवश्य किया, परंतु कभी सुना भी है कि एक पुरुष अपनी पत्नी के प्राण मांगने यम के पीछे पीछे दौड़ जाए? पृष्ठ संख्या 26। दौड़ने की बात तो छोड़ो, कोई पुरुष उस रास्ते पर चला भी नहीं। सौभाग्यहीन होने पर यदि स्त्री को आजन्म किसी महाखूनी के समान अंधियारी जगह पर जीवन बिताना पड़ता है, तो तुम अपनी पत्नियों की मृत्यु के उपरांत अपने मुंह पर कालिक पोत कर दाढ़ी मूछ मुड़वा कर अरण्यवास क्यों नहीं स्वीकारते? तुम तो पहली की मृत्यु के पश्चात 10वें ही दिन दूसरी को ब्याह कर लाते हो। बताओ भी कि कौन से ईश्वर ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है? जैसी स्त्री वैसा ही पुरुष, तुम में ऐसे कौन से अलौकिक गुण विद्यमान हैं? तुम कौन ऐसे शूर और जाबाज हो कि जिसकी वजह से परमपिता ने तुम्हें ऐसी स्वतंत्रता दी है? अरे, जब तक तुम्हारी वीरता नहीं आजमाई जाती, तब तक ही तुम्हारी शान है। झांसी की रानी के समान 400-500 औरतें निसंग होकर हाथों में तलवार लिए निकले तो तुम्हारे भागने का ठिकाना नहीं रहेगा। पीठ दिखाकर ऐसे भागोगे कि ढूंढे पता न चलेगा। पहले मरहटों में ऐसे संगीन बहादुर थे जिन्होंने दिल्ली तख्त को हिलाकर रखा था, और आज अंग्रेजों का राज आते ही तुम्हारी दिग्गी बंध गई। तुम चाहे अपने आप को बड़े कलम बहादुर क्यों न समझो, उसे कौन घी डाल रहा है? वैसे भी आज की स्थिति में कलम बहादुर की जगह रोटी बहादुर कहा जाए तो हर्ज ही क्या है? तुम बड़े ही ज्ञानी, धर्मपरायण, परोपकारी, दयावान, ऐसे सर्वगुण संपन्न भूत हो, तुम्हारे पास भूत दया क्यों नहीं है? या वह तुमने जंगल के शेर को बेच दिया? तुम कहते हो कि जैसे अपनी जात होती है, वैसे ही दूसरे के भी उसका सम्मान करना चाहिए। फिर स्त्री के लिए तुम्हारा ऐसा भेदभाव क्यों? जिस प्रकार तुम्हारे प्राण तुम्हें प्रिय हैं, वैसे ही क्या स्त्री को उसके प्राण प्रिय नहीं रहे होंगे? तुम्हारे प्राण सोने के बने हैं और स्त्रियों के लोहे से बने हैं क्या? पृष्ठ संख्या 27। या फिर स्त्री को तुम पत्थर समझते हो, भावना रहित पत्थर। पति की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति बदतर हो जाती है, उसका केश वपन किया जाता है। इस सृष्टि की सारी सुंदर चीज़ों से, सुख सुविधाओं से उसे वंचित किया जाता है। मंगल कार्यों में भाग लेने की उसे अनुमति नहीं होती, भले ही वह एक निरीह अबोध बालिका क्यों न हो, उस पर बंधन डाले जाते हैं। विधवा का किसी के सामने आना अपशगुन माना जाता है, क्या यह सब उचित है? पति की मृत्यु हुई, इसमें उसकी पत्नी का क्या दोष? उसने थोड़ा ही भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे पति को ले आओ और मुझे छुटकारा दे दो। अन्य विधवाओं की बदतर जीवन देखकर के बाद तो वह ऐसी प्रार्थना कर ही नहीं सकती, परंतु इतनी विचार शक्ति है किसके पास, जो गुजर गया उसकी आयु समाप्त हुई इसलिए गया, तो उसकी पत्नी इस मृत्यु के लिए अपराधी कैसे हो सकती है, यदि विधवा को अपना उर्वरित जीवन अंधियारा, बदसूरत और भगवान का नाम लेकर ही बिताना है, तो विधुर हुआ पुरुष भी यह स्थिति क्यों नहीं अपनाता, वह क्यों दूसरी शादी कर गृहस्थ धर्म अपनाता है। शास्त्रकर्ताओं की तिरछी नज़र केवल स्त्रियों पर ही क्यों, धर्म तो सबके लिए समान है, जो नारी के लिए वही पुरुषों के लिए क्यों नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं है। यदि शास्त्रकर्ताओं ने स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक ही नियम रखे होते तो प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष दूसरा विवाह न कर सकता, और यदि किया भी तो उस पुरुष को जाति भ्रष्ट बहिष्कृत किया जाता, अपशगुनी कहकर मंगल कार्यों से वंचित रखा जाता। इस परिस्थिति का मुकाबला हो सकता है कि स्वयं शास्त्रकर्ताओं को भी करना पड़ता, इसलिए ही पुरुष को अधिकाधिक विवाह करने का अधिकार दिया गया, और उसमें भी यदि पुरुष धनवान हो तो पूछिए ही मत, हाथ में पैसा और साथ में स्तुति पाठक, फिर क्या पूछना। चाहे वह शरीर से भिखारी हो, बूढ़ा हो, पैसा चाहे जो करवा सकता है, और ऊपर से स्तुति पाठकों के द्वारा मिलने वाली उत्तेजना, सफ़ेद बाल काले रंग से रंगाए जाते हैं, दांत बैठाए जाते हैं, गुजरी जवानी को पुनः दिखाने की कोशिश होती है, आईने में झांक कर बार बार रूप निहारा जाता है, और रूप अधिकाधिक निखारने के लिए प्रयास किए जाते हैं, फिर स्तुति पाठक बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करते हैं, और बूढ़े बाबा घोड़ी पर सवार हो विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे शरीर भले ही साथ न दे।